वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। जैसा कि आपको मैंने कल के एपिसोड में बताया, आई डोंट नो आपने देखी या नहीं देखी, बट मैं आजकल जो पाकिस्तान की तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनके मैनिफेस्टोज को गो थ्रू कर रहा हूँ, जस्ट टू गेट एन इनसाइट ऑफ कि एग्जैक्टली ये लोग क्या सोच रहे हैं और क्या ये पोटेंशियली करेंगे अगर ये पावर में आ गए। मैंने पहले भी कहा था लास्ट एपिसोड में, अगर आपने नहीं देखी, कि ये बड़ी बोरिंग चीज़ है, मैनिफेस्टो कौन सुनता है यार, क्या एमी टाइम ज़ाया हो रहा है ये वो। लेकिन ये कि और क्रिटिक इस पर यह आता है कि जी ये लोग तो ये तो नाराबाजी है एमी, ये जो कह रहे हैं वो थोड़ी करेंगे, ये तो जो इनका दिल करेगा वो करेंगे, विच इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि मैनिफेस्टो जो है वो एक्चुअली दो तीन चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग आपको देता है। तो ये कि आपको पता लगता है कि लीडर क्या सोच रहा है, उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है और इनसाइट क्या है, तो आपको एक तो उनके दिमाग की ट्रूएस्ट सेंस में समझ आती है कि वो क्या करेंगे आगे जाके। दूसरा ये कि और ज़रूरी नहीं है कि वो सारा कुछ कर सकें, लोगों को ये लगता है इन्होंने बोल दिया तो ये करेंगे, ऐसा होता नहीं है। निज़ाम ऐसा है कि वो इतना आसान नहीं होता, डिपेंड करता है कितनी सीटें मिली, क्या उनमें चीज़ें, कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने वाली हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके लिए आपको लीगल सिस्टम चेंज करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके लिए आपको सेनेट से अप्रूवल्स चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यू नो। वो चीज़ें डिपेंड करेंगी कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट आती है, कितने लोगों को वो लूप इन कर सकते हैं, बट सोच को आपको समझ आ जाती है, जिसकी वजह से आप एग्जैक्ट इन हार्ट एंड स्पिरिट जो है ना, लेटर एंड स्पिरिट जो है वो शायद इंप्लीमेंट ना हो, बट डायरेक्शन आपको नजर आ जाती है। दूसरा ये कि अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं भी इंटरेस्टेड, आपको इन लोगों में भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, तो या आप एजुकेशन सेक्टर से हैं या हेल्थ सेक्टर से हैं या इकोनॉमिक्स से हैं या स्पोर्ट्स से हैं, बहुत सारे और एरियाज से हैं, तो आपको सेंस मिल जाएगी। क्योंकि इन मैनिफेस्टोज के ऊपर सम ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल विद इन दीज पार्टीज़, जो कि जो है ना डेवलपमेंट सेक्टर में होते हैं, जो कि एकेडमिया में होते हैं, जो कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग में होते हैं, वो लोग इस पर काम कर रहे होते हैं। और ये लोग अपना, ये पार्टीज़ जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस से ये निकाल रही होती हैं कि जो उनको मसाइल नज़र आते हैं वो कहती हैं कि जी हमें ये लगता है कि ये मसला है पाकिस्तान में और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो वो समझना इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर फिर डिबेट करना इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को ये बोलेंगे यार वो चोर डाकू लुटेरा, उससे बेहतर है कि जो उनकी पीछे जो सोच है उसको डिबेट किया जाए। क्योंकि इंडिविजुअल्स, पाकिस्तानी इलेक्टोरल निज़ाम में इंडिविजुअल्स डू नॉट मीन एनीथिंग, पार्टीज मीन एवरीथिंग। सो आपको पार्टी की आइडियोलॉजी समझनी है, क्योंकि आखिर में होगा ये कि सारे इंडिविजुअल्स आएंगे, उन्होंने आखिर में आके टोटल एक प्राइम मिनिस्टर बनाना है और उस प्राइम मिनिस्टर के अंदर 10 15 20 25 30 लोगों की कैबिनेट होनी है, उस कैबिनेट ने सारा कुछ करना है, बाकी तो लेजिस्लेशन, इवन लेजिस्लेशन में 10 12 15 एमएनएज होते हैं जो कि थोड़ा लीड ले रहे होते हैं, वो डिफरेंट लेजिस्लेशन वो लाते रहते हैं, बाकी सारों का काम ये होता है कि यार बस आना है, आके पार्लियामेंट लॉजेस में रहना है, छुट्टी वुट्टी गुजारनी है, जाना है, जाके वोट कर देना है, वोट आप जो पार्टी कह रही है उसके खिलाफ आप वैसे ही वोट नहीं कर सकते। तो इट्स जो 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 कोर गोल है वो पार्टी का है, पार्टी के विजन का है, और पार्टी का विजन मैनिफेस्टो से बेहतर आप नहीं समझ सकते। एनीवेज, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। आज हम पीपल्स पार्टी को डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो को देख रहे हैं कि उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। कल हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैनिफेस्टो को किया था, तो वो अगर आपने देखना है तो वो वीडियो यहाँ पे शायद आ जाए, वरना यू नो चैनल पे जाएं तो पिछली वीडियो वही है। थोड़ा सा मैं स्टार्ट करता हूँ पीपल्स पार्टी ने कि एग्जैक्टली क्या क्या मेजर इनके जो एरियाज हैं जिसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है। तो जाहिर है कि एक तो ये इन्होंने मेजर फोकस इनका इसके ऊपर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर है कि जी हालात ख़राब हैं आजकल इकोनॉमी के, और जनरली पीपल्स पार्टी का डीएनए भी ये रहा है कि जी हम तो गरीब फोकस्ड हैं, सोशलिस्ट थे एक ज़माने में ये लोग, तो आज तक वो वाला डीएनए इनके अंदर होता है कि जी हम जो है वो यू नो गरीब तरीन का किस तरह से हम ख्याल रखेंगे, हम मजदूर तबके का किस तरह ख्याल रखेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले तो उसका है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ से मुराद ये कि सिर्फ अमीर की ग्रोथ नहीं, पूरे निज़ाम की ग्रोथ। फिर इसी तरीके से एजुकेशन के ऊपर है, हेल्थ केयर के ऊपर है, वुमेन्स राइट्स के ऊपर है, अगेन अ वेरी कोर पिलर ऑफ पीपल्स पार्टी, उसके ऊपर एक प्रॉपर सेपरेट हेड है। सोशल प्रोटेक्शन, जो पीटीआई जो कल जो मैंने वीडियो की थी उसके अंदर उन्होंने एहसास, वो एहसास कहते हैं ये बिस्प कहते हैं, बट ये दोनों पार्टीज जो हैं बहुत एक्सटेंसिवली सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करती हैं, तो इन्होंने भी उसके अंदर किया हुआ है कि जी हम सोशल प्रोटेक्शन के अंदर क्या क्या करेंगे, और खासकर आजकल के इकोनॉमिक हालात के अंदर इन्होंने उसको ये रेडिकली इंक्रीज करना चाह रहे हैं, और उसके ऊपर मैं जाऊँगा। राइट्स फॉर ऑल, जनरली ह्यूमन राइट्स और उन सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने डिटेल में गए हैं। डेमोक्रेटिक राइट्स, स्ट्रेंथनिंग द कोर, जस्टिस फॉर ऑल छोटा सा है ये एक पेज का, डेमोक्रेटिक राइट्स ये भी छोटा सा है एक डेढ़ पेज का, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, एनर्जी जैसा मैंने आपको कहा था उन्होंने भी सेपरेट एक पूरा एनर्जी को दिया हुआ था, इन्होंने भी एनर्जी को सेपरेट दिया हुआ है, उन्होंने कोई 10 पेजेस का दिया हुआ था, इन्होंने एक पेज का दिया है बट इन्होंने सेपरेटली उसको दिया है। ग्रीन न्यू डील के ऊपर फोकस किया है, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और उसके ऊपर एक्चुअली काफ़ी फोकस है, इवन स्टार्ट में भी है और आगे जाके भी है। और आई थिंक उसका एक मेजर रीज़न ये है कि जो दो मेजर एरियाज़ पर इनका फोकस है, मतलब जो सबसे बड़े हेड्स प्रोबेबली है ना, हेल्थ केयर सबसे बड़ा हेल्थ जो हेड है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का है, जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी इन्होंने दी है, उसके बाद एजुकेशन है, हेल्थ है, और फिर आखिर में ना ये क्लाइमेट चेंज और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उन्होंने बहुत डिटेल में वो किया है। अच्छा, माय अंडरस्टैंडिंग इस खासकर जो क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब जो है उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं और उनकी जो लास्ट जॉब थी वो एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी, तो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर उन्होंने बड़ा फोकस डाल के उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा उन्होंने जो है ना वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर किया हुआ है, क्योंकि बिलावल साहब जो थे उस टाइम के ऊपर, एक तो पीपल्स पार्टी की आई बिलीव शरी रहमान थी जो कि मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज थी एट द टाइम, और बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर थे जब ये फ्लड्स आए थे पीडीएम गवर्नमेंट में, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली कोऑर्डिनेट किया था विद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो सारी जो कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, और उस पर जाके इन्होंने जो प्रोमिसज लिए थे कि जी हमें फाइनेंसिंग वगैरह हो जाएगी, तो इनको उधर जाके मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग इनको समझ आई कि यार हमारे पास स्टोरी बड़ी अच्छी है, अगर हम स्टोरी को बेच लें तो हमारे पास एक बहुत अच्छा पोटेंशियल आ सकता है ऑफ गेटिंग इनटू द होल क्लाइमेट फाइनेंसिंग, हमें उसमें ग्रांट्स मिल सकती हैं, लोन्स मिल सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और कहानी वाकई बड़ी दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो है वो इतने कार्बन, हमारा कार्बन फुटप्रिंट इतना बड़ा नहीं है, इंडिया चाइना अमेरिका का बहुत बड़ा है, अमेरिका वेस्ट का तो बहुत ही बड़ा है पर कैपिटा अगर आप देखें, लेकिन मार हम खा रहे हैं, वी आर वन ऑफ द मोस्ट नेशंस मोस्ट प्रोन टू क्लाइमेट डिजास्टर्स, तो इस वजह से अगर हम उसको चैम्पियन कर लें उस कॉज को तो वी कैन रीप अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स फ्रॉम इट। इसके ऊपर बड़ा गलत नैरेटिव लोगों का होता है कि जी ये बेगिंग है और ये मुफ्त का वो है, आई डोंट एग्री विद दैट। आई थिंक हाँ अगर ये आपकी कोर पॉलिसी है तो स्टूपिड है, क्योंकि अगर आपको बस ये है कि यार मैं खुद तो कुछ कर नहीं सकता तो मैं अब एक सैड स्टोरी बेच के मैं जो है वो कुछ पैसे ले लूँ तो वो स्टूपिड है, लेकिन एज पार्ट ऑफ योर एंटायर प्लान इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इट्स नॉट जस्ट बेगिंग। क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक पूरा वर्टिकल खड़ा हो रहा है, पीटीआई ने भी उसके बारे में बात की हुई है, इन्होंने भी उसके बारे में बात की हुई है, तो वो एक बड़ा फ्यूचर प्रूफ है। इट्स गुड कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो आज इसके बारे में कर रही है, क्योंकि 10-15 साल बाद ये बहुत मेजर यू नो ग्लोबल इकोनॉमिक्स का हिस्सा होगी, तो इट्स एक्चुअली गुड। जो दूसरा फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, उससे मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई, बट विल गो स्टेप बाय स्टेप। तो इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो इंटरेस्टिंगली सरप्राइजिंगली बड़ा इनका बड़ा प्लेन सा है, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग अ होल लॉट मोर डिटेल, मतलब नाराबाजी है लार्जली, और ख़ासकर अगर मैं पीटीआई और पीएमएलएन के मैनिफेस्टो से कंपेयर करूं तो वो जो दोनों के दोनों मैनिफेस्टोज हैं वो बहुत डिटेल्ड हैं, टॉकिंग अबाउट पॉलिसी, टॉकिंग अबाउट नंबर्स, टॉकिंग अबाउट डेटा। ये जो मैनिफेस्टो है जो पीपल्स पार्टी का आज मैं देख रहा हूँ, ये फेज़ वन वाला, ये वो वाला है कि यार पहली दफ़ा एक पार्टी आ रही है और वो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आके ना एक मैनिफेस्टो निकाल रही है। 2018 का जो पीटीआई का था वो भी इससे थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में था, लेकिन स्टिल सिमिलर था, नाराबाजी में पॉपुलिज्म में वो ऐसा था कि जी 50 लाख घर बनाएंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे। अब वो पीटीआई में कुछ भी नहीं है, वो नज़र आ रहा है कि 2.5 साल में उनको जो उन्होंने सीखा है उसको वो इस डॉक्यूमेंट में लेकर आए हैं जो मैनिफेस्टो है। पीपल्स पार्टी ऑन द अदर हैंड, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा पीपल्स पार्टी से ये रहा है कि इंटेलेक्चुअल डेप्थ उनके यहाँ बहुत रही है, आप उनसे अग्री करें या ना एग्री करें, बट ये जो मैनिफेस्टो है ये लार्जली ये नाराबाजी है, ये एक 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 अच्छी पिक्चर है, यू नो अच्छे इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जो कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी है ना जिस तरह से वो खेलती है कि यू नो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, रेसिज्म नहीं होनी चाहिए है, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और मीन वाइल पूरी दुनिया में बॉम्ब करते फिर रहे हैं तो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है इसमें से अनफॉर्चुनेटली। बट एनी वेज लेट्स गेट इनटू द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वाली चीज़, उसमें वो कह रहे हैं कि जी हम रियल इनकम बढ़ाएंगे वेजर्स की, वेज अर्नर्स की, हम जो है वो ग्रीन न्यू डील लेकर आएंगे जैसे क्लाइमेट फाइनेंसिंग और वो सारा हमें उससे फ़ायदा होगा, हम जो है वो एजुकेट करेंगे लोगों को और उस एजुकेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हम हेल्थ का ख्याल रखेंगे, हम हाउसिंग को एज अ राइट समझ के उसके ऊपर काम करेंगे, हम गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम चलाएंगे जो बिस्प है सोशल प्रोटेक्शन का, और उसके थ्रू हम जो है ना जो गरीब तरीन है उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, हम खुशहाल किसान किसानों के लिए काम करेंगे, हम जो है वो मजदूर के मेहनत का सिला इनिशिएटिव पीपल्स लेबर्स इनिशिएटिव, हम मजदूर तबके के लिए काम करेंगे, हम जवान के लिए एक यूथ कार्ड लेकर आएंगे, हम भूख मिटाने के लिए काम करेंगे, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, और जो जो इसमें जो लार्जली आपको नजर आ रहे हैं ना, खैर ये था भी थोड़ा इंट्रोडक्शन टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिटिकल भी हूँ, लेकिन चूंकि मुझे इकोनॉमिक्स का कोई ऐसा सेपरेट हेड नज़र नहीं आया तो इस वजह से आई थिंक कि मतलब या तो वो अलग से होता तो मैं कहता कि चलो वो डिटेल वहाँ पर है। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो 5 पिलर्स ऑफ न्यू पीपल्स इकोनॉमी, इन्होंने एक जनरल विजन दे दिया कि जी हम एग्जैक्टली हमारे कोर 5 एरियाज ऑफ फोकस क्या है। पहला ये है कि जी हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सॉवरेनिटी को वापस बहाल करेंगे, हम टफ डिसीजंस लेंगे जो कि इंश्योर करेगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहाल हो, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे चेंज में, हमारा कोर गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट अगले 5 साल में ऐसी होगी जिसमें पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो अगेन जो एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट मुझे इसमें नज़र आ रहा है कि एक प्योरली सोशलिस्ट पीपल्स पार्टी जो है वो अब थोड़ी थोड़ी फ्री मार्केट और कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है बट प्योरली नहीं जा रही। जो इंटरेस्टिंग शिफ्ट मुझे इस बार नज़र आया, PMLN तो प्योर कैपिटलिस्ट है, हार्ड कोर कैपिटलिस्ट, पीपल्स पार्टी हार्ड कोर सोशलिस्ट थी, PTI समवेयर इन द मिडल थी। PTI मुझे इस बार थोड़ी कैपिटलिज्म से सोशलिज्म पे जाती हुई नज़र आई है और उसको नज़र आया कि यार ये तो हमें कैपिटलिस्ट क्लास ने लास्ट टाइम मार बड़ी खिलाई थी, कभी एमनेस्टी ले ली, कभी यू नो रियल एस्टेट में ये कर लिया वो कर लिया, तो इस बार उनका कंपेरेटिवली बहुत सोशलिस्ट किस्म का वो है एजेंडा, और वो थोड़ा थोड़ा ना अब ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं अपने जो फ्री मार्केट एब्सोल्यूटिस्ट न्यू लिबरल्स थे ना वो थोड़े से उनसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऑन द अदर हैंड थोड़ी सी एक्सपैंड करती हुई नज़र आ रही है। एट दिस पॉइंट टाइम मैं कहूँगा बहुत सिमिलर है पीपल्स पार्टी और PTI इन टर्म्स ऑफ द कोर आइडियोलॉजी, वो बहुत सिमिलर है, इन टर्म्स ऑफ द मैनिफेस्टो और द डेप्थ वो ऑब्वियसली उसमें डिफरेंस है। उसी में वो कह रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाएंगे, हम एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट होगी टुवर्ड्स लोकल कम्युनिटीज, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एंड लो अर्बन लो इनकम अर्बन एरियाज, ह्यूमन कैपिटल, क्लाइमेट मिटिगेशन एंड रिजिलियंस सेक्टर्स और रीजन्स जहाँ पर हाई ग्रोथ पोटेंशियल होगा। जी ठीक हो गया। प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल, हम जो है जी गरीब तरीन को का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, हम फिस्कल इम्बेलेंस का ख्याल करेंगे क्योंकि जो है जी हमारा हम इतना टैक्स नहीं है। सो ये क्या कह रही है, ये जो बात हो रही है फिस्कल इम्बेलेंस की, ये लोकल इकोनॉमी की बात हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब इस वक्त इंटरेस्ट ज़्यादा दे रही है कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे गेट, और अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे आप हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो फिस्कल इम्बेलेंस है थैंक गॉड कि ये तीनों पार्टीज़ के मंशूर में है, तो आपको नज़र आता है कि इनको इसका एहसास एटलीस्ट ज़रूर है कि थोड़ा सा हम बेहतर तरीके से अब अपनी फिस्कली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये तीनों ने बोला हुआ है। तो खैर ये कह रहे हैं कि जी हम टैक्स टू GDP रेशियो को 15% के ऊपर लेकर जाएंगे ओवर अ 5 ईयर पीरियड, अभी एट दिस पॉइंट टाइम आई थिंक 8.5 या 9% के ऊपर है। तो ये हो गए 5, ठीक है। मैनेजमेंट मैनेजिंग डेट एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज, एड्रेसिंग फिस्कल इम्बेलेंसेज, प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल, इन्वेस्टिंग इन चेंज और रीगेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये कह रहे हैं जी हमारा 5-पॉइंट एजेंडा है फॉर द न्यू पीपल्स इकोनॉमी। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि जी हम अब उसमें वो डिटेल में जाते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है वो रियल इनकम बढ़ाएंगे वेज अर्नर्स की। यहाँ पर मुना मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि यार आप ये जो पॉपुलिस्ट नारे हैं वो कह रहे हैं जी हम 8% रियल टर्म्स में हम इनकम बढ़ाएंगे, विच बेसिकली मीन्स कि अगर 30% इन्फ्लेशन है तो हम 38% बढ़ाएंगे आपकी लिविंग वेज। कैसे बढ़ाएंगे, किस पैसे से बढ़ाएंगे, और अगर आप बस एक लॉ आपने पास कर लिया कि यार वो है तो आप लॉ को 38% बढ़ा के अभी लेट से 30,000 है 40,000 है, आप 40,000 को 38% बढ़ाना शुरू कर दें 5 साल में, वो 1,00,000 पे पहुंच जाएगी, 1,00,000 रुपया कोई दे नहीं सकता, आपकी इकोनॉमी कंड्यूसिव भी नहीं है, तो होगा क्या कि इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा। अगेन डेप्थ नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी, नाराबाजी है कि हम बढ़ा देंगे बस हो जाएगा ज़बरदस्त, या तो हम बस वो बढ़ा देंगे या हम वो बस अनाउंसमेंट कर देंगे वो फिर इंप्लीमेंट हो या ना हो। और ये बड़ा बड़ा मसला रहा है पहली गवर्नमेंट्स में कि नारेबाजी के ऊपर अनाउंसमेंट्स हो गई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो कि एक्चुअल जिसके पीछे पूरा फलसफा होता है ना, आपने एक स्ट्रक्चर मैनेज करना है बट वो मुश्किल काम होता है, तो उसके बारे में ज़्यादा डेप्थ नहीं है, होनी चाहिए थी। आई एम ट्राइंग नॉट टू बी टू क्रिटिकल और टू नेगेटिव, बट पीपल्स पार्टी से मेरी बेहतर एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि जनरली मैंने एक्सपीरियंस किया था कि उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डेप्थ थी, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर ये लग रहा है कि ये एक फ्रेश पार्टी है, नारे लगा रही है, एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि हम पावर में आएंगे, सोच रही है कि ठीक है चलो पावर में अगर आ गए गलती से कुछ आपस में कुछ पॉलिटिक्स हो गई तो फिर देखी जाएगी कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं, बट दे डोंट सीम लाइक दे नो एक्चुअल के फेडरल के लेवल के प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस पोटेंशियली क्या इमर्ज कर सकते हैं। ओवरऑल मैनिफेस्टो में ये फील आती है, खैर मैं ऐसे ऐसा आगे आपको लेके जाऊँगा। एजुकेशन फॉर ऑल, हम इंश्योर करेंगे कि सब लोग जाएँ स्कूल 25A आर्टिकल कहता है कि सबको स्कूल जाना चाहिए, तो हम इंश्योर करेंगे सब जाएं, हम इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन 30 मिनट के ट्रैवल टाइम के अंदर अंदर हो, और मिडिल और सेकेंडरी 60 मिनट के ट्रैवल टाइम में हो, और हम एक फंड देंगे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को रूरल और लोअर इनकम अर्बन कम्युनिटीज़ के अंदर ताकि वो स्कूल चले जाएँ, और हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान की, फिर खुशहाल किसान में सीड्स के ऊपर काम करेंगे, सब्सिडी देंगे यूरिया के ऊपर, प्रोड्यूस को मार्केटिंग करेंगे, मतलब यार आई डोंट नो, आई ट्राई टू बी वेरी न्यूट्रल ऑन दिस, आई डोंट नो, मे बी देयर इज अ बायस हियर, बट आई वांट यू गाइस टू गो एंड रीड दिस, रीड द पीटीआई मैनिफेस्टो, देन रीड द पीपल्स पार्टी मैनिफेस्टो. मैं थोड़ा सा ना इसमें आगे जाता हूँ, मैं आखिर में अपना सारा ओपिनियन दूंगा. इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तीन चार चार हेडिंग्स हैं, बट कुछ नहीं भी लिखा हुआ. आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड इट, बट उसका मकसद ये है कि आप चैट जीपीटी को बोलेंगे ना कि यार मुझे ना मेटर्नल और चाइल्ड हेल्थ केयर के ऊपर बताओ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ और मुझे बताओ कि मैं उसको क्या करना चाहिए, तो चैट जीपीटी ये लिखेगा, और वो ऐसे लग रहा है, लिटरली वो ऐसे लग रहा है. मैंने कह रहा चैट जीपीटी ने ये लिखा है, बट चैट जीपीटी सबसे जेनेरिक बात लिखता है, तो यहाँ पर ना वो जेनेरिक बातें लिखी हुई हैं. प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स के ऊपर हम जो है वो हाई क्वालिटी एक्सेस दे देंगे. अच्छा, इसके ऊपर एक्चुअली उन्होंने हेल्थ केयर के ऊपर थोड़ा सा इन्होंने डेप्थ है, डेफिनेटली है. आईवीएफ सेंटर्स के ऊपर काम करेंगे, फैमिली प्लानिंग काउंसलर्स बनाएंगे, नेशनल रजिस्ट्रीज बनाएंगे. डेप्थ है, बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत छोटी हैं, मतलब ये रेडिकल नहीं है, तो मैं प्रॉब्ली इसको इस तरह कह दूंगा, जो हेल्थ के अंदर ना डेप्थ है लेकिन इतने रेडिकल नहीं है. शायद पाकिस्तान का मसला इतना गंभीर हो चुका है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लोग बहुत अब कहेंगे कि यार बहुत बड़ा मसला है, उसको बहुत सीरियसली सॉल्व करना पड़ेगा. बट मैनिफेस्टो देख के ऐसा लग रहा है कि यार हाँ, सिस्टम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ चीज़ें बेहतर करने के लिए आ जाएंगे. तो वो थोड़ी फीलिंग आ रही है. आई एम नॉट श्योर इफ़ द मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक की भी फीलिंग यही है, बट खैर आखिर में उसके बारे में बात करते हैं. पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसा मैंने बोला, इसके ऊपर उन्होंने तो खैर बहुत डिटेल में किया हुआ था, इन्होंने भी एक पूरा पेज कवर किया उसके ऊपर. अच्छा है कि इसको अब रियलाइज़ होना शुरू हो गया है, और इसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने इसके अंदर लिखी हुई हैं. एक अच्छा एलिमेंट था मेंटल हेल्थ का और कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स का, उसके ऊपर फोकस बाकी पार्टीज़ में नहीं नज़र आया, वो बस उन्होंने कहा चलाई जाएगी, देखी जाएगी, इन्होंने उसके ऊपर फोकस किया, विच वॉज़ वेरी गुड. पीपल्स पार्टी का एक बड़ा मेजर वो रहा है हमेशा वेमेंस राइट्स, उसके ऊपर बहुत डिटेल में एटलीस्ट 3 से 4 पेजेस इन्होंने उसको दिए हैं, जिसमें वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी हम जो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग होगी, जिसमें जो हमारा वो है जो पैसे जो बजट्स हैं वो हमारे ऐसे एरियाज़ में लगेंगे जहाँ पर जेंडर्स का जो है ना जो वेमेन है पर्टिकुलरली उनको फ़ायदा हो सके, वो अपलिफ्ट हो सकें. हम अपने सोशल सेफ्टी नेट्स को बढ़ाएंगे, हम डेडिकेटेड क्रेडिट प्रोग्राम्स बनाएंगे जहाँ पर ख़वातीन को जो है वो इंटरेस्ट फ्री या रिड्यूस्ड इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स मिल सकते हैं, वो चीज़ें मिल सकती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स मिल सकती हैं, और जेंडर इंक्लूसिव लैंड रिफॉर्म्स लेकर आएंगे. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि जी वुमेन्स ओनरशिप ऑफ कल्टिवेटेबल लैंड को हम बढ़ाएंगे, ताकि क्योंकि लैंड जो है वो पाकिस्तान में पर्टिकुलरली वो पावर की निशानी है, क्योंकि वो आपकी वेल्थ है, वो आपकी सारा कुछ है, तो वो अगर वेमेन के पास जाएगी तो ऑटोमेटिकली द एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन विल डेफिनेटली इंक्रीज, सो दैट वॉज गुड. फिर एक्सेस टू हेल्थ केयर के ऊपर उन्होंने कहा है कि जी प्रेगनेंट वेमेन, लैक्टेटिंग वेमेन को हेल्थ केयर का एक्सेस मिलना चाहिए, फैमिली प्लानिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक्सेस मिलना चाहिए. पोलिटिकल स्फेयर के अंदर एक जो थोड़ी रेडिकल चीज़ है वो ये कह रहे हैं कि जी हम रिजर्व सीट्स फॉर वेमेन जो है वो 17% से उठा के 33% कर देंगे नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज में, ताकि ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो ऑफ द वेमेन इन पॉलिटिक्स. आई थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग. मैं जनरली इक्वालिटी या उसमें मैं एक्विटी में बिलीव करता हूँ, बट आई थिंक एक्विटी के अंदर भी अगेन आई डोंट नो, आई हैव मिक्स फीलिंग्स. आई एम नॉट गोना से आई एम अगेंस्ट दिस, आई एम ऑल्सो नॉट गोना से आई एम फुली प्रो दिस. आई एम नॉट श्योर कि रिजर्व सीट्स कितना वो लेकर आएंगी, इम्पैक्ट लेकर आएंगी, पर्टिकुलरली क्योंकि इन अ सोसाइटी जहाँ पर एलीट कैप्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो होता ही है कि जो ख़वातीन हैं वो जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है ना, ग्रास रूट लेवल एम्पावर्ड ख़वातीन ऊपर आई हैं और वो आके कर रही हैं, वो नहीं आ पाता. तो मे बी अ बेटर वे वुड बी कि आप जो है वो डेडिकेटेड इलेक्शंस रखवाएं जिसमें सिर्फ डेडिकेटेड ख़वातीन कर सकती हैं, ताकि यू एक्चुअली हैव चॉइस ऑफ वेमेन हु आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, एंड हमें ज़्यादा एम्पावर्ड ख़वातीन मिलें. अगेन ये फैक्ट है, आप जाके देख लें, नेशनल असम्बली के अंदर रिजर्व सीट्स के अंदर यू नो इस पॉलिटिशियन की भांजी, तो उस पॉलिटिशियन की बेटी, तो उस पॉलिटिशियन की बहन, सो सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दैट इज़ नॉट, दैट डजंट डू एनीथिंग. सो इट्स ये नाराबाजी टाइप ही है, उसका एक्चुअल इम्पैक्ट नहीं है. 17% पे नहीं था तो 33% पे भी नहीं होगा. तो आई एम स्टिल कन्फ्यूज अबाउट दिस, बट नॉनदलेस CNIC रजिस्ट्रेशन ऑफ वेमेन, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर करेक्टर असैसिनेशन ऑफ वेमेन, कोड ऑफ कंडक्ट इन कंसेंसस विद ऑल पोलिटिकल पार्टीज, लीगल रिकग्निशन ऑफ सिंगल पेरेंट, दिस इज वेरी गुड एंड वेरी यूजफुल, एक्सेस टू जस्टिस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस के खिलाफ जो है वो हम उसके ऊपर बहुत डिटेल में किया हुआ है, बड़ा अच्छा किया हुआ है इन्होंने. तो यहाँ पर नज़र आ रहा है, अब ये देखे ना, ये नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर काम हुआ है और जो पीपल्स पार्टी का काम हुआ है उसकी डेप्थ है, और उस डेप्थ के ऊपर फिर वो डिटेल में उन्होंने सारा बताया हुआ है. बाकी एरियाज में ये नहीं है. तो ये होता है ना कि यार अगर कोई फॉर एग्जांपल काउंटर आर्ग्यूमेंट दे, कोई पीपल्स पार्टी का जियाला देख रहा होगा, वो कहेगा कि यार नहीं नहीं ये तो जाहिर है मुजम्मिल भाई, ये तो एक एक, एक विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें डिटेल थोड़ी होगी. सर जिसमें काम हुआ है ना उसमें डिटेल है. ये वाली डिटेल PTI लेवल डिटेल इसके अंदर है. रिव्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, जेंडर सेंसिटिविटी ऑफ सेक्सुअल वायलेंस केसेस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ECP टास्क फोर्स, रेजिंग इलेक्टोरल टिकट्स फॉर वुमेन, एम्पावरिंग वुमेन इन लोकल गवर्नेंस, एनहांस्ड रिप्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग, वुमेन कॉकसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत डिटेल है. मैं जैसे ये बताने का मकसद ये था ये डिटेल में कि जिस पॉइंट के ऊपर इन्होंने एक्चुअली फोकस करके उनको पता है ना, तो उन्होंने उसके ऊपर डिटेल भी दी हुई है. सो दैट्स एक्चुअली प्रीटी गुड. फिर सोशल प्रोटेक्शन में फिर डिटेल में जाते हैं. जाहिर है आपको पता है पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वो है, BISP प्रोग्राम था, और ये उनका कोर है अगेंस्ट सोशलिस्ट पार्टी. एंडिंग क्रॉनिक हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी, वी विल इरेडिकेट सेवेयर फूड इनसिक्योरिटी विद इन 5 years बाय एस्टैब्लिशिंग अ रोबस्ट सिस्टम टू प्रोटेक्ट 4.5 मिलियन इंडिविजुअल्स एट रिस्क, कपल्ड विद अ टारगेटेड अप्रोच टू एलिविएट मॉडरेट फूड इनसिक्योरिटी बाय हैविंग द अफेक्टेड पॉपुलेशन. कैसे करेंगे? वी विल डू दैट. हाउ? नो आइडिया. एंड गोल लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि हम एक्चुअली करेंगे क्या, तो हम जिससे ये एंड गोल होगा. मतलब ये एंड गोल तो सब करना चाहते हैं ना. ये एंड गोल तो मैं आज पॉलिटिकल पार्टी बनाता हूँ, मैं भी ये लिखूंगा, आई वांट टू एंड क्रॉनिक हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी. थोड़ी डेप्थ में जाएं सर, थोड़ा बताएं तो सही कि कैसे करेंगे हम फूड इनसिक्योरिटी में, ये XYZ चीज़ें करेंगे. बट खैर एनीवेज, फॉस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स टेलर टू लोकल नीड्स, एडिशनल रिसोर्सेज फॉर सोशल प्रोटेक्शन. अच्छा ये थोड़ा सा इन्होंने डिटेल दे दी. पार्टी विल सीज अनटारगेटेड सब्सिडीज, ये एक बहुत मेजर शिफ्ट है. पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अनटारगेटेड सब्सिडीज खत्म करेंगे. ये सारी पार्टीज कह रही हैं आपके हम सब्सिडीज कम करेंगे. तो एक महंगाई की लहर आएगी मेजॉरिटी ऑफ मिडिल क्लास एंड अबव लोगों के लिए आने वाले वक्त के अंदर, और उसको प्रॉब्ली ये IMF का के सर पे डाल के उस शोल्डर पे बंदूक पे करेंगे. बट वो करना ज़रूरी है, पाकिस्तान उससे आगे बगैर आगे जा नहीं सकता. तो वो सब ने कहा है कि हम सब्सिडीज़ ख़त्म करेंगे. लेकिन PTI और पीपल्स पार्टी दोनों ने ये कहा है कि जी हम उन जो टारगेटेड, इन्होंने कहा है जी 800 बिलियन रुपीज़ की सब्सिडी ख़त्म करके हम सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, जो BISP का टारगेटेड फ्रेमवर्क है, उसमें पैसे डालेंगे. और हम सोशल प्रोटेक्शन का जो स्पेंड है वो 0.6% जो GDP से बढ़ा के 1.2% करेंगे. दिस इज़ गुड. दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ depth that I expected in a lot of other areas, very important areas. खैर फिर आगे ये फिर से वो जाते हैं ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी के ऊपर. वो कहते हैं जी प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्स, लेजिस्लेशन ऑन टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन्फोर्स डिसअपेयरेंस, इन सारी चीज़ों के ऊपर करेंगे. डेथ पेनल्टी रिफॉर्म के ऊपर काम करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के ऊपर काम करेंगे, सपोर्ट फॉर टेररिज्म विक्टिम्स के ऊपर काम करेंगे, oversight of intelligence agencies करेंगे. Measures will be taken to bring state intelligence agencies under legislation ensuring oversight and accountability. Also effort will be made to depoliticize and decorporatize the national security complex. So ये बड़ा अच्छा, इन्होंने प्यार से थोड़ा सा अंदर डाला हुआ है, अच्छा है ये, दिस इज़ वेरी गुड. PMLN ने तो बस इकोनॉमिक्स पे फोकस किया ना, इन्होंने एक्चुअली खामोशी बहुत सारी चीज़ें डाली हैं अच्छी. तो ये दिस वॉज एक्चुअली गुड एज वेल, कि ये क्योंकि अगेन पीपल्स पार्टी मार खाई भी इन चीज़ों से, तो वो भी अब इसको एटलीस्ट द विजन है इसके, हम उसको फिक्स करना चाह रहे हैं. कह रहे हैं जी प्रिजन रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, डे केयर सेंटर्स एंड चिल्ड्रन इन डोमेस्टिक सर्विसेज, जो है वो खवातीन जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए एक तो हम काम करेंगे, डे केयर सेंटर्स बनाएंगे, और उसके अलावा हम कंप्लीट बैन लगाएंगे कि डोमेस्टिक सर्विस के अंदर बच्चा नहीं, 18 साल से छोटा नहीं काम कर सकता, विच इज़ अ गुड थिंग. इंप्लीमेंट अगर कर पाएँ तो दैट वुड बी ग्रेट. ह्यूमन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उसके ऊपर है ह्यूमन राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन. वो कह रहे हैं जी 2018 का जो ट्रांसजेंडर बिल था उसको हम इंश्योर करेंगे कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो. जो एग्जैक्ट वो वाला लॉ था वही एग्जैक्ट एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो. ह्यूमन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ये बहुत अच्छा था और ये बहुत डिटेल में है, और इसमें इन्होंने काम पता लग रहा है कि बहुत डिटेल में काम किया हुआ है. अगर आपको हो तो आप जाके पढ़ लीजिएगा. ह्यूमन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में है, अच्छा है, उसके ऊपर काम किया हुआ है. ह्यूमन राइट्स अंडरमाइंड बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अगेन यहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छा सा ना उनको वर्ड बड़ा अच्छा किया, ह्यूमन राइट्स अंडरमाइंड बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन का जो है ना वो प्रॉब्लम एक पाकिस्तान में ये है कि कल्चरल बैकलैश बहुत ज़्यादा आता है. तो इन्होंने इसको बड़े अच्छे से बेचा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन की एक्सप्लोजन की वजह से ह्यूमन राइट्स का मसला आ रहा है, मतलब और लोगों को दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके ऊपर हमने कैसे फोकस करना है. तो उसके ऊपर ठीक ठाक डिटेल के अंदर उन्होंने बताया और कह रहे हैं कि जी जो विजन है वो ये हम कह रहे हैं कि हम स्ट्राइव कर रहे हैं कि बाई 2030 फर्टिलिटी रेट 2.2 चिल्ड्रन पर वुमेन पे आ चुकी हो और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 1.1% पे आ चुकी हो. और उसमें उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छा इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया हुआ है कि लेडी हेड वर्कर्स के साथ हमने किस तरह काम करना है, हमने नेशनल नैरेटिव किस तरह निकालना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस वाज गुड. राइट्स ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो मैंने आपको कहा था ना गिग वर्कर्स पिछले एपिसोड में आपको बताया था, PTI ने इनको कहा था होम बेस्ड वर्कर्स, ये गिग वर्कर्स की बात कर रहे हैं. इसमें उन्होंने एक्सप्रेसली मेंशन किया है बाइकिया, करीम, इन ड्राइव, ऊबर, यांगो, फूड पैंडा, एयरलिफ्ट, चीते, घर पर एंड मैनी अदर ऑनलाइन एप्लीकेशन. इनके जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई लेबर लॉज आएंगे ताकि वो प्रोटेक्ट हो सकें और उनकी जो क्या कहलाती है इंश्योरेंस हो सके और ओल्ड एज बेनिफिट और यू नो पेंशन की स्कीम्स वगैरह हो सकें. अच्छा जी, फिर उसके बाद उन्होंने इसकी बात की है कि जी हम डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर चेंजेस करेंगे, कुछ वो लेजिस्लेशन वगैरह लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम जो है उसके ऊपर इंश्योर करेंगे कि वो उसके ऊपर काम प्रॉपर्ली हो, सिविल सर्विस के ऊपर हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को राइट टू वोट देंगे, वर्कर्स की रेमिटेंस के ऊपर हम बूस्ट करने के लिए कुछ प्लान करेंगे, आर्ट कल्चर एंड म्यूज़िक को काम करने के लिए हम प्रमोट करेंगे उसको. अगेन नथिंग डिटेल, नथिंग रेडिकल. प्रायोरिटाइजिंग द रूल ऑफ लॉ, जस्टिस फॉर ऑल. उसके बाद है जी वाटर फॉर लाइफ, मैनेजिंग वाटर स्कार्सिटी. फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक्चुअली अच्छा काम हुआ है, क्लियरली जो फार्मर्स बैकग्राउंड है पीपल्स पार्टी का वो उस पर नजर आ रहा है. एंड देन उसके बाद फिर एनर्जी के ऊपर इन्होंने दिया है और क्लाइमेट चेंज के ऊपर दिया है. जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे फील हुई वो ये थी कि इन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काफ़ी डिटेल दी हुई है. और जाहिर है जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे वो भी फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिफोर वो प्राइम मिनिस्टर बने. तो उनका भी कोर फॉरेन पॉलिसी था, बिलावल भुट्टो साहब का भी कोर फॉरेन पॉलिसी बना. तो इस वजह से इसके ऊपर उन्होंने बहुत डिटेल में बात की हुई है. उन्होंने कहा है जी दुनिया का निज़ाम चेंज हो रहा है, एक नया ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर आ रहा है, और उस पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर हमने पाकिस्तान को किस तरह से नए निज़ाम में लेकर जाना है. वो ओवरऑल अच्छा है इन द सेंस के जो इन्होंने एनालिसिस या जो एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है वो अच्छा है और समझ आ रहा है इनको. नून लीग को फॉरेन पॉलिसी वाइज नून लीग सीम्ड लाइक के बिल्कुल ब्रेन डेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. PTI का मैंने आपको बता दिया जी उन्होंने तो गए नहीं, वो तो एक फलसफे पे गए. उन्होंने कहा जी हम ऐसे हैं, हम बाकी दुनिया जैसी, आई डोंट केयर, हम ऐसे हैं. वो उन्होंने एक पेजर दिया, इन्होंने 8-10 पेजेस दिए हैं और प्रॉपर उन्होंने डिटेल में गए हैं कि जी जो चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर है उसमें हमने किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, जो एशियन सेंचुरी है उसमें हमने किस तरह से उसको कैपिटलाइज करना है. इट्स गुड. द फॉरेन पॉलिसी पार्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी मैनिफेस्टो इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट आउट ऑफ ऑल थ्री. तो दैट्स पर्सनली वेरी गुड. अफगानिस्तान का कह रहे हैं कि जी हम अफगानिस्तान से दोस्ती करेंगे, हम जो है वो नॉन इंटरफेरेंस करेंगे अफगानिस्तान में, और हमारी एक हिस्ट्री है अफगानिस्तान के साथ तो हम उस हिस्ट्री का ख्याल रखेंगे और हम अपनी सॉवरेनिटी का भी ख्याल रखेंगे और हम उनका भी ख्याल रखेंगे. तो एक बड़ी अच्छी सी उन्होंने वो की. उन्होंने कहा जी कश्मीर का जो है ना कोई वो नहीं होगा, समझौता नहीं होगा. कश्मीर जो है वो जो 5 अगस्त को उन्होंने किया इंडिया ने वो बड़ा गलत है और हम जो है कश्मीर के ऊपर कोई वो समझौता नहीं करेंगे. अलबत्ता कश्मीर का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है तो हमें मिल बैठ के बात करनी चाहिए और हमें UN के रेजोल्यूशन के तहत हमें एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग शुरू करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए न्यू दिल्ली के साथ इंडिया के. उसमें उन्होंने कहा कि जी इंडिया के साथ दोस्ती यारी बड़ी ज़रूरी है, करनी चाहिए, ट्रेड और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिल्ड करनी चाहिए, और जो है ना हमें हाँ पाकिस्तान के सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल के प्रॉब्लम्स हैं उसको उसके नॉट विद स्टैंडिंग, बट हमें दोस्ती यारी करनी चाहिए, इंडिया की तरफ हमें जाना चाहिए. फिर इसी तरीके से और उन्होंने बताया उन्होंने कहा जी गैस पाइपलाइन आ सकती है, ट्रेड है जो कि विच इज़ ट्रू एज़ वेल कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है उससे पूरे रीजन को फ़ायदा होगा. हमें भी उसको सोचना चाहिए. जब तुर्की जो है और मिडल ईस्ट जो है वो दुश्मन है इसराइल का लेकिन ट्रेड उनके साथ कर रहा है. आजकल तो खैर सेंसिटिव हालात हैं तो ये एग्जांपल इतनी वो नहीं होती, लेकिन ट्रेड इज़ ऑलवेज़ इंपॉर्टेंट, ट्रेड इज़ ऑलवेज़ गुड. आपकी जो दुश्मनी है वो आप रखें अपनी, इंडिया चाइना की कितनी दुश्मनी है लेकिन ट्रेड चल रही है तो वो ट्रेड इंपॉर्टेंट है. अच्छा फिर उसके बाद वो गए, उन्होंने कहा जी फॉस्टेड टाइव इज मिडल ईस्ट GCC एंड द मुस्लिम वर्ल्ड. उसमें उन्होंने डिटेल में गए, उन्होंने कहा जी मुस्लिम वर्ल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको उसके बाद हमें बड़े अच्छे टाइज रखने चाहिए, सारा कुछ है और मतलब मुस्लिम वर्ल्ड आ गया. ठीक है फिर उसके बाद आए बियॉन्ड द रीजन. अभी नेबर्स, पहले उन्होंने कहा नेबर्स, नेबर्स में कहा इंडिया, अफगानिस्तान, कश्मीर और बस ये नेबर्स हैं, ठीक है। ईरान कंस्पिक्यूसली गायब है, चाइना का मेंशन ही नहीं है चाइना का वर्ड ही मेंशन नहीं है। मेरा ख्याल है मैं अगर कंट्रोल एफ करके कंप्यूटर पे सर्च भी करूँ ना तो वो भी शायद मेंशन नहीं है। मैं चाहूँगा आप जाएँ और जाके सर्च करें। बट बियॉन्ड द रीजन उसमें उन्होंने कहा जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, पाकिस्तान के साथ और अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए, अमेरिका के साथ हमें वापस डायलॉग स्टार्ट करना चाहिए, अमेरिका अमेरिका का गुड सीन है अमेरिका अमेरिका फिर उन्होंने कहा जी EU के साथ ताल्लुकात, GSP स्टेटस, एक्सपोर्ट प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस, सारा कुछ यू नो वो भी बड़ा गुड सीन है। फिर उन्होंने कहा जी हमें साथ ही अफ्रीका में भी जाना चाहिए, हमें लैटिन अमेरिका में भी जाना चाहिए, हमें अपनी SCO की जो ऑर्गेनाइजेशन जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस्तेमाल करके हमें पैन एशिया को में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस सारे में चाइना का जिक्र नहीं है। अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो मीनवाइल हम मल्टीलैटरलिज्म में करेंगे, हम UN में पार्टिसिपेट करेंगे, हम वो सारा कुछ करेंगे, बहुत अच्छा है। डिप्लोमेसी और ग्लोबल आउटरीच को हम बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा है। चाइना नहीं है ईरान नहीं है, इट सो एनीवेज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है मैनिफेस्टो। अब मैं अपने कुछ तासुरात आप लोगों को दे देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल दो तीन चीज़ें से नज़र आती हैं। पहला नज़र आता है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन द फेडरल गवर्नमेंट, या तो ये है जो कि ऑड बात है बिकॉज 10 साल पहले इनकी हुकूमत थी, इनके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी डेप्थ क्यों नहीं है इसके अंदर। ChatGPT कैन राइट दिस मैनिफेस्टो फॉर मोस्ट पार्ट, लिटरली ChatGPT कैन राइट दिस मैनिफेस्टो। और वो मैनिफेस्टो कर क्या रहा है कि वो नारे लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ये कर देंगे, कैसे करेंगे कोई पता नहीं। और जो जो PMLN और PTI का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर वो ये कह चुके हैं, वो इससे आगे जा चुके हैं कि यार नारा तो लग गया, हम सबको पता है जो ये कह रहे हैं ना, बाय द वे जो पीपल्स पार्टी कह रही है वही नून लीग कह रही है, वही PTI कह रही है, हमेशा उसके ऊपर डिबेट होती ही नहीं है। हम गरीब बच्चों का और औरतों का ख्याल करेंगे, हर कोई करना चाहता है, कैसे करेंगे इज इम्पॉर्टेंट। हम इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, कैसे करेंगे इज इम्पॉर्टेंट। तो पहला जो है वो ये है कि डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है, डिसअपॉइंटिंग। मेरे जो तीनों में से नंबर 3 के ऊपर मैं रैंक कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो को, आई डोंट नो वाई। खूबसूरत बहुत है, हर किस्म का उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरह बेहतरीन वर्ड इस्तेमाल किया ना, ऐसा ज़बरदस्त इंक्लूसिविटी एंड दिस एंड दैट वो सारा कुछ है। बट जिस तरह वो डेमोक्रेटिक पार्टी है अमेरिका की, कि वो सब बेहतरीन करते हैं जी, रेसिज्म बुरी, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, सारा कुछ है, और मीनवाइल वही पार्टी है जो सबसे ज़्यादा जंगे करती है, सबसे ज़्यादा बम फाड़ती है, राइट। सो वो वाली फीलिंग आ रही थी मुझे इस मैनिफेस्टो में। दूसरा ये वाली फीलिंग आई कि पीपल्स पार्टी को बिल्कुल भी ये एहसास नहीं है, उनको लग रहा है कि निज़ाम चल रहा है जैसा चल रहा है और अब हम निज़ाम को थोड़ा सा बेहतर कर देंगे। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो थोड़ा फ़र्क है। पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा तंग आई हुई है, इकोनॉमिक हालात हमारे बहुत बुरे हैं, ओवरऑल हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के हालात बहुत बुरे हैं, हम जो है वो बहुत ज़्यादा दुनिया से पीछे हैं। तो जो अर्जेंसी, जो रेडिकल रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी वो तो दूर दूर तक इसके अंदर नहीं है, वो लैंग्वेज भी नहीं है, वो थॉट भी नहीं है। बट मोर देन दैट, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात होती है ना, कि यार हमें तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यानी कि दिस आइडिया जो टॉक शोज पे सारे बोलते हैं, जो हर इकोनॉमिस्ट से मेरी बात हुई है, जो हर बिजनेसमैन से मेरी बात हुई है, वो कह रहा है यार निज़ाम तबाह हुआ है, निज़ाम में स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, हम बैंक्रप्ट होने वाले थे। इसमें तो दूर दूर तक नहीं है भाई स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसमें लिटरली लेपअप होती है। इसमें बस ये है कि हम इसकी टास्क फोर्स बना देंगे, हम इसकी जो है ना यूं इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, हम इसका ये कर देंगे। Nonetheless, I don't want to be too critical, but इस manifesto को पढ़ के People's Party की अगर government आती है तो it will be business as usual. It will be the same thing that we have experienced over the last 50-60 years. Maybe people might feel के that's okay, that's people's prerogative. But feeling ये है कि they believe that Pakistan ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, कभी कभार थोड़ा emotional हो जाता है, but इतना भी बुरा नहीं है, और हाँ हम थोड़ी सी इसलाह कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अगर एक जॉब इंटरव्यू के लिए होता ना, तो पाकिस्तान एक ऐसी कंपनी है जो बैंक्रप्ट होने वाली है, तो उसमें PTI आके कह रही है कि जी इस कंपनी को कम्प्लीटली रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है ग्राउंड अप। पीपल्स पार्टी कह रही है कि सर आपकी कंपनी बेहतरीन है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप मुझे हायर करें, आपको मैनेजमेंट बेहतर चाहिए, बस मुझे हायर कर लें, मैं इसको मैनेज कर लूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, कंट्री आपकी, कंपनी आपकी ओके है। तो ये वाली फीलिंग आ रही है। तीसरा ये कि जो एक चीज़ जो अगर मैं कहूँ ना कि एक हिंट मिली है इस डॉक्यूमेंट से, वो हिंट ये मिली है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को, क्योंकि देखें इस टाइम के ऊपर ग्लोबली एक एक कोल्ड वॉर चल रही है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है, चाइना कैंप वर्सेस अमेरिका कैंप, जिसमें चाइना के कैंप के अंदर जो है वो रशिया, चाइना, ग्लोबल साउथ, जो पिछले दिनों चाइना ने वन बेल्ट वन रोड के ऊपर 120 कंट्रीज़ को बुला के एक पावर शो किया कि जी ये सारे लोग हमारे साथ हैं, जो साउथ अफ्रीका फ़लस्तीन की जंग लड़ रहा है, जो ब्राज़ील जो है वो नई करेंसी की बात कर रहा है, ये तमाम लोग जो हैं ये चाइना और रशिया के कैंप में, जिनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। और फिर एक अमेरिका का कैंप है, अमेरिका है उसके अंदर, यूरोप है उसके अंदर, और इंडिया सीमिंगली इमर्ज कर रहा है उसके अंदर। इंडिया थोड़ा सा कन्फ्यूज भी है, वो रशिया को भी वो नहीं करना चाहता, लेकिन वो क्वाड का हिस्सा है और वो वेस्टर्न कैंप में जा रहा है और वो प्रॉप हो रहा है एज अ काउंटर टू चाइना। इस फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट ने बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली आपको ये बता दिया है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पाकिस्तान को उठा के फुली वेस्टर्न कैंप में लेकर जाएगी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो चाइना के बारे में, चाइना से इंगेज करती रहेगी, छोटा सा खामोशी ऑफ द टेबल, बट चाइना बींग सच एन इंपॉर्टेंट प्लेयर उसका मेंशन तक इसके अंदर नहीं है। ईरान का मेंशन इसके अंदर नहीं है, वो दोनों प्लेयर्स, रशिया का मेंशन इसके अंदर नहीं है, जहाँ से हमें पोटेंशियली सस्ती एनर्जी मिलनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो जो अमेरिकन एडवर्सरीज हैं उसका कोई जिक्र नहीं है इसके अंदर। जो जो इस वक्त अमेरिकन कैंप में है उसके बारे में कहा है कि यार हम इंडिया से दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, हम जो है वो मिडल ईस्ट से हम अपना कर लेंगे, सिस्टम कर लेंगे, हम नई दुनिया में ये एक्स वाई जी कर लेंगे, लेकिन किसी किस्म की इंगेजमेंट की बात चाइना के बारे में नहीं की गई, किसी किस्म की इंगेजमेंट की बात ईरान के बारे में नहीं की गई, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज पीपल्स पार्टी के अंदर देर इज़ अ ह्यूज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अहले तशी एंड हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन अ वेरी प्रो अहले तशी पार्टी, बट ये एक शिफ्ट मुझे नज़र आया क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरान के बारे में कुछ ना कुछ इनकी पॉलिसी इंगेजमेंट आएगी, बट वो नहीं आई। तो चूंकि पिछले 2-2.5 साल के अंदर एक सर्टन शिफ्ट हमें पता है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी आया है, पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स में भी आया है, कंस्पिरेसी थ्योरीज भी आई हैं, खैर अब तो कंस्पिरेसी थ्योरीज भी क्या है, वो इंटरसेप्ट का पूरा उसके ऊपर आर्टिकल्स भी हैं बहुत सारे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से जो पाकिस्तान की पोलिटिकल बैटल है वो एक्चुअली पॉलिटिक्स नहीं है, वो जियोपॉलिटिक्स है और उसके अंदर डिफरेंट नोड्स हैं। गलत सही कि मैं डिबेट नहीं कर रहा, बट डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स हैं। एक बिलीफ सिस्टम कहता है कि यार हमारा फ्यूचर एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है जो कि अपने इंटरेस्ट के लिए जो भी उसने डिसीजन लेना है वो लेगा, जो कि आपको पीटीआई की जो फॉरेन पॉलिसी का जो थोड़ा सा उन्होंने दिया है वो नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं जी हम अपनी मर्जी से करेंगे और हम न्यूट्रैलिटी रखेंगे और हम एक्स वाई जी करेंगे। इस डॉक्यूमेंट से ये एक दूसरी साइड इमर्ज कर रही है जो कि आपको कह रही है कि यार अमेरिका हैज़ बिन द फ्यूचर, हैज़ बिन द पास्ट, अमेरिका हैज़ ऑलवेज वन ऑल कोल्ड वॉर्स और ऑल एवरीथिंग एंड वी बिलीव दैट अमेरिका इज़ द फ्यूचर एंड सो देयरफॉर वी विल पुल ऑल ऑफ आवर वेट्स बिहाइंड अमेरिका एंड सो अगेन मैं नहीं कह रहा ये अच्छा है या बुरा है, यू कैन डिसाइड कि आपको क्या लगता है कि क्या हम इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अमेरिकन कैंप की तरफ जाना चाहिए या आपको लगता है कि पाकिस्तान को ग्लोबल साउथ के साथ जो एक इमर्ज कर रहा है जिसमें एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जो कि स्पीयर हेड कर रहा है चाइना और रशिया, क्या हमें उनके साथ आगे जाना चाहिए। बट एनीवेज यहाँ पर मैं इसको एंड करूँगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या थॉट्स एंड ओपिनियंस हैं। अगेन मैं कहूँगा कि मैं क्रिटिक इसमें जो कर रहा हूँ एक इंटेलेक्चुअल क्रिटिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी भी बात को अगर आपने क्रिटिक करना है तो इंटेलेक्चुअली क्रिटिक करें कॉमेंट सेक्शन में आके, और खैर क्रिटिक करने से पहले क्रिटिक करें ना करें, इनकी वेबसाइट्स, तमाम लोगों की वेबसाइट्स के ऊपर इनके मैनिफेस्टोस पढ़े हुए, गो थ्रू इट, गो यू लर्न सो मच फ्रॉम इट, देयर सो मच इनसाइट, सम ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल फ्रॉम ऑल ऑफ दिस पार्टीज हैव रिटन देम, सो यू नो इट्स ऑलवेज गुड टू गेट मोर नॉलेज। बट एनीवेज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताएं कि आपके क्या ख्याल हैं जो मैंने आपको बताया है इस मैनिफेस्टो के बारे में, आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आती है तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे। इसी के साथ साथ 70% लोग जो हैं वो मुझे देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स अगर आप देख रहे हैं और आप कुछ फील करें तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मैं तमाम पढ़ता हूँ। एक चीज़ मैं कहूँगा, दिस माय सेकंड एपिसोड ऑफ दी दिल की बात सीरीज़, जो पहली 4-5-6 एपिसोड में आपसे पूछता रहूँगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है कंटेंट वगैरह, ज़्यादा लंबा तो नहीं है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, क्या चीज़ इंप्रूव की जा सकती है। मैं बहुत ऑनेस्ट और रॉ और रियल रख रहा हूँ इसको, मैं ज़्यादा इसी वजह से मैंने पढ़ा, मैंने थॉट्स बनाए और मैं आके बैठ गया, मैं उसको रियल डिलीवरी देना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि मैं बना करके आपको कोई चीज़ घोल के पिलाऊँ, बट अगर आपको लग रहा है कि बोरिंग है या इररेलेवेंट है या ये है वो है तो मुझे ज़रूर बताएं, आई लव टू हियर योर फीडबैक। बट एनीवेज दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, यू आर वॉचिंग दिल की बात, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू tomorrow.